चैप्टर 93। अब आगे पता नहीं क्यों अकेले देवांश के साथ इतनी दूर जाने से उसका मन घबरा रहा था कि जैसे वहां कुछ बुरा होने वाला है, पर वे अपने मन के घबराहट को इग्नोर कर फिर से पैकिंग करने लगती है। रात के 3 बजे दिशा अनाथाश्रम से अपना बैग लेकर निकलती है तो देखती है कि देवांश अपनी कार से टेक लगाए खड़ा होकर मोबाइल चला रहा था। वहीं देवांश के कुछ बॉडीगार्ड्स देवांश के पीछे अपनी गाड़ी के पास खड़े थे, जिसे देख दिशा देवांश के पास आती है और देवांश को देखते हुए कहती है, सर मैं खुद आ जाती, आपको आने की क्या जरूरत थी। दिशा की आवाज़ सुनकर देवांश अपनी मोबाइल को ऑफ करता है और दिशा को देख बोला, मिस दिशा कोई बात नहीं, रात काफ़ी हो गई है, इतनी रात में आपको अकेले आने में प्रॉब्लम होती और आपके लिए सेफ भी नहीं था, अब चलिए वरना हमें लेट हो जाएगा। देवांश की बात सुनकर दिशा हाँ में सर हिला देवांश के कार में अपना बैग रख बैठ जाती है। दिशा को बैठता देख देवांश भी कार में आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और देवांश की कार वहां से निकल जाती है। 20 मिनट बाद देवांश की कार एक बड़े के फील्ड के पास आ रुकती है, जिसे देख देवांश उतर जाता है और देवांश को उतरता देख दिशा भी उतर जाती है तो देखती है कि देवांश का एक प्राइवेट जेट वहां से पहले से खड़ा है। देवांश दिशा को देख बोला, मिस दिशा चलें। देवांश की बात सुनकर दिशा हाँ में सर हिला देती है और देवांश के साथ अपना बैग ले जेट के अंदर चली जाती है। ये पहली बार था जब वे देवांश के साथ इतनी दूर अकेले जा रही थी। वहीं दिशा जैसे ही जेट के अंदर जाती है तो अंदर का नज़ारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जेट अंदर से एकदम लग्जीरियस था। हर एक चीज़ काफ़ी महंगी और परफेक्ट तरीके से वहां रखी गई है। उस जेट को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वे जेट के अंदर ना आकर किसी VIP होटल के अंदर आ गई हो। वहीं देवांश जो अपनी शीट पर बांटने ही वाला था, जब उसे महसूस होता है कि दिशा उसके साथ नहीं आ रही है तो वे पीछे मुड़कर दिशा को देखने लगता है। दिशा को यूं हैरानी से अपने जेट को देखता पाकर उसकी होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वे दिशा के पास जाकर बोला, मिस दिशा आप क्या देख रही हैं, आपको बैठना नहीं क्या। देवांश की बात सुनकर दिशा होश में आती है और देवांश को देख हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मैं बैठने ही जा रही थी सर, वैसे आपका जेट काफ़ी अच्छा है। इतना बोल वे जाकर खिड़की के पास बैठ जाती है, जिसे देख देवांश भी जाकर दिशा के बगल में बैठ जाता है। इसी के साथ कुछ ही देर में जेट उड़ान भर देती है। दिशा जो कि पहली बार जेट पर बैठ रही थी, जब वे जेट को उड़ता हुआ देखती है तो अनजाने में ही देवांश का हाथ तेजी से पकड़ अपने डर की कंट्रोल करने लगती है। वहीं देवांश जब दिशा को अपना हाथ पकड़ता हुआ देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी गुड गर्ल ने खुद से उसका हाथ पकड़ा हुआ है। वहीं दिशा जो पहले डर रही थी, जब वे खिड़की के बाहर बादलों को देखती है तो उसका डर एक ही पल में खत्म हो जाता है और उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये पहली बार था कि वे इतने करीब से बादलों को देख रही है, इसीलिए वे इस पल को एंजॉय करने लगती है। ऐसा ही कुछ देर करने के बाद दिशा की पलकें भारी हो जाती है और वे धीरे धीरे गहरी नींद में चली जाती है और उसका सर देवांश के कंधे पर जा गिरता है। वहीं देवांश जब दिशा को अपने सर को यूं अपने कंधे पर देखता है तो वे मुस्कुराते हुए कहता है, गुड गर्ल मैं तुम्हें इसी तरह हमेशा अपने करीब बेहद करीब चाहता हूँ। इतना बोल वे दिशा को अपनी जुनूनी नज़रों से एक टक देता जा रहा था, क्योंकि उसे सोती हुई दिशा और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अगली सुबह 7 बजे सिंघानिया विला। रूहिया जल्दी से उठ कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है और फिर नीचे किचन की ओर चली जाती है ताकि अगर कोई काम हो तो करवा सके। रूही जब किचन में पहुंचती है तो देखती है कि सुमन जी वहां पर पहले से ही मौजूद है और चाय बना रही हैं और बाकी के सर्वेंट भी अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसे देख रूही सुमन जी के पास आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। रूही की बात सुनकर सुमन भी मुस्कुराते हुए उसे देखकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग बेटा। सुमन जी का इतने प्यार से हाथ फेरना रूही को काफ़ी अच्छा लगता है। वे सुमन जी को देखते हुए बोली, आंटी अगर कोई काम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। रूही की बात सुनकर सुमन जी बोली, बेटा वैसे तो सब हो ही गया है, पर तुम एक काम करो, रुद्र के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर उसके स्टडी रूम में दे आओ। रुद्र के लिए कॉफ़ी बनाने वाली बात सुनकर रूही का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि वे रुद्र के लिए ना तो कॉफ़ी बनाना चाहती थी ना ही उसके पास जाना चाहती थी, मगर जबकि उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, मतलब सुमन जी से खुद हेल्प करने को बोला था, तो वे अब मना भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वे बेमन से रुद्र के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। कुछ देर में कॉफ़ी बना रूही सुमन जी को देखते हुए बोली, आंटी मैंने कॉफ़ी बना दी है, आप प्लीज़ इसे किसी से कहकर भिजवा दीजिए। सुमन की बात सुनकर सुमन बोली, सॉरी बेटा मगर ये कॉफ़ी तुम्हें ही जाकर रुद्र को देनी होगी, क्योंकि रुद्र के स्टडी रूम में भी किसी का जाना अलाउ नहीं है और जो काका रुद्र के रूम में जाते थे वे अभी तक आए नहीं हैं, तो तुम्हें ही जाना होगा। सुमन की बात सुनकर रूही फीकी सी मुस्कान लिए अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख सुमन एक कप में चाय निकाल अपने कमरे में धीरज जी को चाय देने के लिए चली जाती है। वहीं रूही उस ब्लैक कॉफ़ी के कप को देखते हुए बोली, हे माता रानी इस शैतान से मुझे बचा लेना। इतना बोल वे कॉफ़ी मग को ट्रे में रख ऊपर रुद्र के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है। कुछ देर में रूही रुद्र के स्टडी रूम के पास पहुंचती है और जैसे ही धीरे से स्टडी रूम का दरवाज़ा खोल अंदर अपने कदम रखती है, वैसे ही रुद्र की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, रुद्र सिंघानिया को धोखा देने और झूठ बोलने की। क्या उसे नहीं मालूम कि वे किसके साथ गद्दारी कर रहा है? पर कोई बात नहीं, रुद्र सिंघानिया अपने गद्दारों को इतनी आसान सजा नहीं देता। उस इंसान को तो मैं मौत से भी बदतर सजा दूंगा। उस इंसान को पकड़कर हमारे स्पेशल जगह पर लेकर जाओ और इस तरह टॉर्चर करो कि उसकी रूह काम जाए। और वे क्या, उसके जैसा कोई भी दोबारा रुद्र सिंघानिया से धोखा करने के पहले अपने अंजाम को जान ले। इतना बोल रुद्र कॉल कट कर देता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने रूही बिल्कुल डरी सहमी अपने हाथों में कॉफी लिए खड़ी दिखाई दी। रुद्र पहले तो रूही के डरे हुए चेहरे को देख समझ नहीं पाया कि उसकी रूह इतनी डरी हुई क्यों है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि आखिर बात क्या है,
वैसे ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है और वे उसी स्माइल के साथ रूही की ओर बढ़ जाते हैं।